यरमिया अध्याय 52, यरमिया अध्याय 52 पद 1। जब सिदकया राज्य करने लगा तब वो 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिबनावासी यरमिया की बेटी थी। यहां वो सिदकया की माता का नाम देता है। यरमिया अध्याय 52 पद 2 से लेकर 4 तक। और उसने यहोयाकीम के सब कामों के अनुसार वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। निश्चय यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया। और सिदकिया ने बाबुल के राजा से बलवा किया और उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन, सिदकिया राजा के यरूशलेम में राज्य के 9वें वर्ष के अंत में। यरमिया अध्याय 52 पद 4 और 5। बाबुल के राजा नबुकदनेज़र ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसने उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर किला बनाया। यूं नगर घेरा गया और सिदकिया राजा के 11वें वर्ष तक घिरा रहा। इस प्रकार यरूशलेम 14 महीनों तक घिरा रहा था। यरमिया अध्याय 52 पद 6। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहां तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी न रही। बाबुल का विजय नीति बहुत क्रूर थी। वे नगर की आपूर्ति काट देते थे, जिससे नागरिक भूखे मरने लगते थे। वे उस समय तक प्रतीक्षा करते थे जब तक कि नगरवासी इतने कमजोर ना हो जाएं कि उनका विरोध ही न कर पाए। अतः ये वास्तव में एक भयंकर तरीका था। जब खाने को भोजन नहीं हो तो लोग नरभक्षी हो जाएं, और जब भूख के कारण मनुष्य त्रस्त हो जाए तब वे शहरपनाह को ढाकर प्रवेश करते थे और नरसंहार करते थे। नबुकदनेज़र ने समुद्री किनारे पर बसे सूर नगर के साथ भी ऐसा किया था। उसने 13 वर्ष उनको घेरे रखा था। उसे उस नगर को जीतने में 13 वर्ष लगे थे, क्योंकि वे समुद्री मार्ग से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं लाते रहते थे। एहेस्केल की पुस्तक में इस नगर के विषय बड़ी रोचक भविष्यवाणी है, और ये भी कि परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत और सही होता है। अतः 18 महीनों बाद महीने के 9वें दिन अकाल ऐसा भीषण था कि खाने को रोटी नहीं थी। यरमिया अध्याय 52 पद 7 से लेकर 10 तक। तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उसे सब योद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गए और अराबा का मार्ग लिया। उस समय कसदी लोग नगर को घेरे हुए थे, परंतु उनकी सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा पकड़ा। तब उसकी सारी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। सो वे राजा को पकड़कर हमात देश के रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गए और वहां उसने उसके दंड की आज्ञा दी। बाबुल के राजा ने सिदकया के पुत्रों को उसके सामने घात किया। उसने अपने पुत्रों का वध अपनी आंखों से देखना पड़ा। यरमिया अध्याय 52 पद 10 और 11। और यहूदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया। फिर बाबुल के राजा ने सिदकया की आंखों को फुड़वा डाला और उसको भेड़ियों से जकड़कर बाबुल तक ले गया और उसको बंदीगृह में डाल दिया। सो वे मृत्यु के दिन तक वहीं रहा। यिर्मयाह ने सिदकिया से कहा था कि वो आत्मसमर्पण कर दे तो नबूकदनेज़र उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। वो लगातार उसे यही कहता रहता था, परंतु वो नहीं माना। यिर्मयाह ने यह भी कहा था कि यदि वो परमेश्वर का कहा नहीं मानेगा तो नाश किया जाएगा, परंतु उसने परमेश्वर के वचन की अवहेलना की और परिणाम स्वरूप वो जंजीरों में बांधकर बाबुल ले जाया गया। उसकी आंखें निकाल दी गई थी। उसकी मृत्यु वहां के बंदी गृह में हुई। यिर्मयाह अध्याय 52 पद 12 से लेकर 15 तक। फिर उसी वर्ष अर्थात बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान, जो बाबुल के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगाकर फुंकवा दिया और कसदियों की सारी सेना ने, जो जल्लादों के प्रधान के संग थी, यरूशलेम के चारों ओर की सब शहरपनाह को ढा दिया और जल्लादों का प्रधान नबूजरदान कंगाल लोगों में से कितने को और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बाबुल के राजा के पास भाग गए थे और जो कारीगर रह गए थे, उन सब को बंधुआ करके ले गया। ये वे थे जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। यिर्मयाह अध्याय 52 पद 16 और 17। परंतु देहात के कंगाल लोगों में से कितनों को जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने दाख की बारियों की सेवा और किसानी करने को छोड़ दिया और यहोवा के भवन में जो पीतल के खंबे थे। पीतल के ये विशाल खंबे सुलेमान द्वारा बनाए गए थे, वे परमेश्वर के मंदिर में थे। यिर्मयाह अध्याय 52 पद 17 में आगे लिखा था, और कुर्सियों और पीतल के हौज, ये हौज वे थे जिनमें याजक स्नान किया करते थे। यिर्मयाह अध्याय 52 पद 17 और 18। उन सबों को कसदी लोग तोड़कर उनका पीतल बाबुल को ले गए और हांडियों, फावंडियों, कैंचियों, कटोरों, धूपदानों, निदान पीतल के और सब पात्रों को जिनसे लोग सेवा टहल करते थे वे ले गए। पहली बार वे सोना और चांदी ले गए थे और दूसरी बार सारा पीतल ले गए थे। यिर्मयाह अध्याय 52 पद 20। दोनों खंबे एक हौज और पीतल के 12 बैल जो पायों के नीचे थे। ये पीतल के ढले हुए बैल उस हौज के पायों में थे जिसमें याजक स्नान करते थे। सब कुछ तोड़ दिया गया था। उनका भार गन्ना के परे थे। ये खंबे जो उन्होंने उखाड़ लिए थे, उनकी ऊंचाई 70 फुट थी, उनकी परिधि 18 फुट थी, जो चौड़ाई में देखी जाए तो 6 फुट होती थी। वे भीतर से खोखले थे और उनकी मोटाई 4 अंगुल थी। इस प्रकार आप उनके भार की कल्पना कर सकते हैं। उन पर अनार बनाकर लगाए हुए थे, जिनकी संख्या 196 थी। यिर्मयाह अध्याय 52 पद 23 से लेकर 28 तक। कंगनियों के चारों आलंगों पर 96 अनार बने थे और जाली के ऊपर चारों ओर 100 अनार थे। और जल्लादों के प्रधान ने सराया महायाजक और उसके नीचे के सपन्या याजक और तीनों देवडी दारों को पकड़ लिया और नगर में से उसने एक खोजा पकड़ लिया जो योद्धाओं के ऊपर ठहरा था। और जो पुरुष राजा के सम्मुख रहा करते थे, उनमें से 7 जन जो नगर में मिले, और सेनापति का मुंशी जो साधारण लोगों को सेना में भर्ती कराता था, और साधारण लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले, इन सबको जल्लादों का प्रधान नबूजरदान रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गया। तब बाबुल के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। सो यहूदी अपने देश से बंधुए होकर चले गए। जिन लोगों को नबूकदनेस्सर बंधुआ करके ले गया सो ये हैं, अर्थात उसके राज्य के 7वें वर्ष में 3023 यहूदी। इन यहूदियों में दानियल भी था। यरमिया अध्याय 52 पद 29। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में नबूकदनेस्सर यरूशलेम से 832 प्राणियों को बंधुआ करके ले गया। और अंत में यरमिया अध्याय 52 पद 30। फिर नबूकदनेस्सर के राज्य के 23वें वर्ष में जल्लादों का प्रधान नबूजरदान 745 यहूदी जनों को बंधुए करके ले गया। सब प्राणी मिलकर 4600 हुए। जनसंख्या अधिक नहीं है क्योंकि अधिकांश जन तो मारे गए थे या भाग खड़े हुए थे। यरमिया अध्याय 52 पद 31। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 37वें वर्ष में, अर्थात जिस बाबुल का राजा एबल मरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 25वें दिन, मरोदक उनके राजाओं की पदवी थी। यरमिया अध्याय 52 पद 31 और 32। उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया और उससे मधुर मधुर वचन कहकर, जो राजा उसके साथ बाबुल में बंधुए थे, उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। यहोयाकीन ने बाबुल के राजा के साथ भोजन किया था, अर्थात यहोयाकीन का अंत सिदकिया से अधिक अच्छा रहा। ये यरमिया की भविष्यवाणियों का अंत है। इस पुस्तक के बाद विलाप गीत की पुस्तक आती है जिसका अर्थ है रोना। जिस स्थान को कलवरी और गुलगुता कहते हैं उसे यरमिया की गुफा भी कहते हैं। ऐसी अवधारणा है कि इन्हीं गुफाओं में से एक यरमिया की गुफा थी। जब आप उन चट्टानों को देखते हैं तो गुफाएं ऐसी प्रतीत होती है कि वे खोपड़ी में बने आंख के खड्डों से हैं, परंतु वास्तव में वे गुफाएं हैं। इन्हीं में से एक गुफा यरमिया की थी। माना जाता है कि यरमिया वहां बैठकर यरूशलेम की हालात देख देख कर रोता था कि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और उनका विनाश आवश्यभावी था। यही कारण है कि यरमिया को रोने वाला भविष्यद्वक्ता कहा गया है। यरमिया का यही विलाप विलाप गीत की पुस्तक है। इसके बाद आती है यहेजकेल की रोचक पुस्तक। यहेजकेल विचित्र काम करता था। वह उड़न तस्त्रियां देखता था। परमेश्वर आपके साथ हो और आपको आशीष दे। परमेश्वर का वचन आपके मन में विश्वास के द्वारा अधिकाई से वास करे। दृढ़ नेव और स्थिर आधार पर स्थापित होते हुए आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम की परिपूर्णता को अंत ग्रहण करने में सक्षम हो। परमेश्वर आपको सुहाना समय दे, वो आपकी निगरानी करे और आपको अपनी सुरक्षा की बाहों में और प्रेम में संभाले, यीशु के नाम में।